الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے، انشاءاللہ دو یا تین دن کے بعد رحمتوں کا موسم بہار، رمضان مبارک اپنی رحمتوں برکتوں اور نہ جانے کتنے فیوز و برکات کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا۔ یہ ایک مہمان ہے جو ہر سال آتا ہے اور ہم سے کچھ لیتا نہیں بلکہ دے کر جاتا ہے، اسی لیے آج کی اس نشست میں ہم اس مہمان کے استقبال کی تیاری کا طریقہ بتائیں گے۔ اس کا عنوان یہی ہے، استقبال رمضان۔ مہمان جب آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اگر کسی کو باقاعدہ انوائٹ کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کے آنے پر اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں انواع اقسام کی تیار کرتے ہیں۔ یہ آنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیسا ہے، جیسا مہمان ویسی تیاری۔ ایک بن بلائے مہمان اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، بلکہ بعض تو ایسے کہ آپ کو پتہ چلے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے کہ یار یہ اس وقت کیوں آ گئے، کسی نے بتایا فلاں صاحب آ گیا، پریشان کیوں آ گئے، بلایا نہیں آ گیا، اس کو ٹالو کسی طرح، یہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک وہ ہے جن کو دعوت دے کر بلاتے ہیں کہ آپ آئیے، اہتمام کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، جیسا معظم اور محترم مہمان ہے ویسی تیاری۔ آپ دیکھ لیں کسی دوست کو بلا لیا اپنا یار تو اسے چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے کھا لیں، اور کسی بڑے آدمی کو بلایا زیادہ اہتمام، اور بڑا آدمی زیادہ اہتمام، جیسا اس کا مقام اور مرتبہ ویسا اہتمام۔ اور اس کے آنے سے پہلے بتایا جا رہا ہے، گھر والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو جب وہ صاحب آ جائیں اس طرح بیٹھو، اس طرح کھڑے ہو، اس طرح سلام کرو، کھانا اس طرح لگانا ہے، پانی ایسے پیش کرنا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ہوتا ہے نا۔ تو جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، جس کے آنے سے پہلے اس کا مقام بتا دیا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آنے والا ہے وہ بڑا محترم ہے، جو آنے والا ہے وہ بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہمان یعنی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ شعبان المعظم کی 28 یا 29 تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب کیا، فرمایا سنو، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر۔ ایک رات عبادت میں گزار دیجئے، ہزار مہینوں سے بڑھ کر ثواب دے، اس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا اور 70 گنا۔ اس لیے ایسے عظیم و شان مہینے کا احترام سب پر لازم ہے، اور ایسا مہینہ کہ ہر عمل کا ثواب دگنا ہو رہا، फिर भी अगर हम सवाब ना कमा सके, अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा ना कर सके, तो हमसे ज्यादा बदनसीब और कौन हो। पता ये चला कि रमजान की आमद से पहले उसका इस्तकबाल करना या इस्तकबाल की तैयारी करना, रमजान की आमद से पहले उसकी फजीलत बयान करना, ये हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत सरकार ने खुद किया, सहाबा को बताया, उनको समझाया। कहने का मकसद ये था कि जो आने वाला महीना है बड़ा मुहतरम है, मुबारक है, मुकद्दस है, लिहाजा इस महीने को इबादत और रियाजत के साथ गुजारो, ये इसकी तैयारी इस्तकबाल। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम उसकी तैयारी कैसे करें। हर चीज की तैयारी होती है ना, आप कहीं शादी में जाते हैं तैयारी करते हैं, साफ सुथरा लिबास पहना, खुशबू लगाई, आईने के सामने खड़े होकर शक्ल देखी, हाँ सही है, ये सूट सही लग रहा है, ये सही है, चले गए, तैयारी होती है ना। किसी आम दावत में जा रहे हैं वैसी तैयारी है, शादी में है तो वैसी तैयारी है, जैसा माहौल है वैसी तैयारी, जैसी तकरीब है वैसी तैयारी। तो अब ये जो मेहमान आ रहा है इसके इस्तकबाल के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, हम इस महीने को किस तरह गुजारें, क्या तैयारी करें। और अगर एक सवाल आपसे कर दिया जाए जो आम तौर पे भी अगर आप पूछते हैं तो उसका जवाब एक ही मिलता है कि रमजान मुबारक की तैयारी क्या की, कहते हैं हाँ मैंने तैयारी कर ली। क्या तैयारी की? मैंने वो पकौड़ों के लिए बेसन वगैरह लेकर रख लिया, मैंने वो रूह अफ़ज़ा की बोतल भी रख ली शरबत के लिए, और सारी चीजें मैंने सब दही बड़े के लिए बूंदिया बूंदिया सब तैयार, ये रमजान की तैयारी। अब रोजे में बीवी कहेगी जाओ लेकर आओ, यार कहां मैं गर्मी में जाता फिरूं, पहले से मैंने लेकर रखा, रमजान की भरपूर तैयारी, ये तैयारी है रमजान की। ये तैयारी नहीं, ये तो हमारे जिस्म की तैयारी, ये तो हमारे अपने खाने पीने की तैयारी। तो फिर आप कहेंगे हमने जो सारी चीजें लेके रखी सब बेकार है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये चीजें आप रखें ये भी उसमें शामिल है, जाहिर जरूरत, जिस्म को भी जरूरत है, रूह को भी जरूरत, लेकिन हमारी कैफियत क्या है, हम जिस्म की गिजा का इहतमाम करते हैं, रूह की गिजा का इहतमाम नहीं करते, जबकि ये महीना ही रूहानी महीना है, ये महीना ही रहमतों बरकतों वाला है, ये महीना ही रूहानी कुव्वत में इजाफा करने का महीना है, अपनी रूहानियत को उजागर करने का महीना है, रूहानी कुव्वत पैदा करने का महीना है। तो इस महीने में हम सिर्फ जिस्म की तैयारी कर रहे हैं, ये खाना है, ये पीना है, इफ्तार में हमें ये खाना है, तो सहरी में ये खाना है, फला उसमें ये खाना है, ये तैयारी हमारी कर, ऐसा नहीं कि ये गलत है, आप इसकी तैयारी करें, लेकिन असल तैयारी क्या है, असल रूह की गिजा की तैयारी करें कि जो रूहानी महीना आ रहा है इसमें मुझे क्या क्या आमाल और अफाल करने। बिलाशुबा ये सारी तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन तैयारी ये होनी चाहिए कि अभी महीना शुरू नहीं हुआ, आप अभी से नियत कर लें इंशाअल्लाह मैं पूरे रमजान के रोजे रखूं, मैं पूरे रमजान बाजमात तरावी की नमाज अदा करूं, और अगर तौफीक हुई तो इतिकाफ में भी बैठूं, कुरान करीम पढ़ूंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा, ये है तैयारी रमजान, ये है रमजान की तैयारी। खाने पीने की तो तैयारी सब करते हैं, असल तैयारी ये है कि अभी से आप नियत कर लें, और नियत अभी से कर ली सवाब अभी से जारी, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम। नेक काम की नियत आदमी जब करता है सवाब का सिलसिला उसी वक्त शुरू हो जाता है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, अभी हमने किया नहीं, अभी रमजान शुरू नहीं हुआ, अभी रोजे नहीं रखे, अभी तरावी नहीं पड़ी, सवाब शुरू हो, मेरे इस बंदे ने नियत कर ली है, फरिश्तों को हुक्म है लिख दो कि इसने काम कर लिया, तो अभी से अगर आप नियत कर ले अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और वो काम जरूर जरूर पूरा हो जाए। तो रमजान की तैयारी असल ये है, हम अपने मामूलात को तरतीब दें। अब इसमें हम جس طرح کے گزشتہ سال ہم نے رمضان مبارک سے پہلے جو نشست کی تھی اس میں بھی وظائف آپ کو بتائے تھے، اس میں بھی انشاءاللہ نشست کے آخر میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تھوڑی سی اس کے متعلق اور گفتگو، معمولات ترتیب دیں گے، کس طرح آپ معمولات ترتیب دیں، کیسے پڑھیں، کس طرح کریں گے، ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز، جب رمضان المبارک کا چاند ہوتا ہے سب سے پہلے کون سی عبادت، چاند دیکھنے کے بعد ہم کون سی عبادت کرتے ہیں سب سے پہلے؟ تراویح۔ نہیں پڑھتے کیا سارے؟ جب ہی نہیں بول رہے، ورنہ فٹ سے بول دیتے تراویح۔ چاند سے پہلے تو تراویح نہیں نا، چاند ہوا مسجدوں میں رونق شروع، ادھر چاند نظر آیا ادھر روانہ مسجد کی طرف، حافظ دور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے، مساجد میں حفاظ سامع کو سنا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سنا رہے، شاید چاند ہو جائے۔ پہلی عبادت تراویح رمضان المبارک کی، اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں بلکہ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز تراویح کی ابتدا تو ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور لیکن باقاعدہ اہتمام ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے باختلاف روایت دو یا تین دن نماز تراویح کی باقاعدہ امامت کرائی، اس سے زیادہ نہیں، دو یا تین دن۔ اس کے بعد صحابہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ سرکار کی مسجد میں جگہ ہی نہیں رہی، مسجد نبوی بھر گئی۔ صحابہ اس بات کے شوقین ہوتے تھے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مقام حاصل کر لیں، کوئی مرتبہ حاصل کر لیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک نئی چیز سرکار نے پڑھائی، امامت فرمائی، نماز تراویح، ایک دوسرے کو پتہ چلا بھر گئی مسجد، اب سب بیٹھے انتظار میں کیا بھی کاشان نبوت کا دروازہ کھلے گا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، لیکن سرکار تشریف نہیں لائے، دروازہ بند۔ پوری رات صحابہ بیٹھے رہے انتظار میں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، تب کاشان نبوت کا دروازہ کھلتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، نماز فجر کی امامت فرمائی، مصلی ممبر پر، اپنے ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ فرمائے لوگوں سنو، تمہاری رات کی حالت مجھ پر پوشیدہ نہیں تھی، تم جس ذوق اور شوق سے آئے تھے تراویح پڑھنے مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض نہ قرار دے دے اور آگے چل کے تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔ کتنا خیال ہے حضور کو امت کا کہ جس ذوق شوق سے، سرکار تو قیامت تک آنے والے امتیوں کو دیکھ رہے تھے، ہم جیسے گناہگاروں کو نکموں کو دیکھ رہے تھے، نہیں پڑھیں گے آگے چل کے، میرے صحابہ تو ذوق شوق سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق شوق کو دیکھ کر تراویح کو فرض قرار دے دے گا اور آگے چل کے چھوڑ دیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، صحابہ نے تراویح پڑھی متفرق طور پر، علیحدہ علیحدہ، دو ادھر تو چار ادھر، پانچ ادھر، اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے، جس طرح باقاعدہ جماعت ہوتی ہے ایسے نہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما دیا۔ اب دور آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح تراویح ہوتی رہی، ایک امام کے پیچھے نہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھتے رہے، وہ تشریف لے گئے، دور آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح تراویح ہوتی رہی، دو ادھر پڑھ رہے ہیں تو چار ادھر، دو ادھر، پانچ ادھر، چھ ادھر، الگ الگ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث جو امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے سنی۔ حدیث شریف کیا تھی کہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حضیرۃ القدس، وہاں پر اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے، और जो लोग तरावी पढ़ते हैं फरिश्ते उनके साथ मिलकर ये नमाज पढ़ते हैं। फिर सरकार ने फरमाया जिसने उनको छुआ या उन्होंने किसी इंसान को छू लिया वो ऐसा नेक और सईद हो जाता है कि फिर बदबख्ती उसके करीब भी नहीं जाती। बदबख्ती उसके करीब नहीं जाती। सैयदना फारूक आदम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया जब ये बात है कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं नमाज तरावी पढ़ रहे हैं अगर उन्होंने छू लिया या किसी ने उनको छू लिया नेक और सईद हो गया बदबख्ती दूर हो गई तो हम इस बात के ज्यादा मुस्तैद हैं कि हम इस नमाज तरावी का बाकायदा इत्तेमाम करें जमात के साथ पढ़ें ताकि ज्यादा लोग नेक हो जाएं ज्यादा लोग सईद हो जाएं बदबख्ती दूर हो जाए खुशबख्ती आ जाए। लेकिन अकेले फैसला नहीं किया सहाबा को बुलाया सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने सहाबा को बुलाया अकाबिर सहाबा उनसे मशवरा किया सब ने इत्तेफाक किया कि हाँ ये बात दुरुस्त और ये बात हुजूर से साबित थी सरकार की सुन्नत थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी इमामत में सहाबा को ये जमात कराई हुजूर इमाम बन गई और तमाम सहाबा मुक्तदी तो एक सुन्नत मिल गई सहाबा इस बात पर मुत्तफिक हो गई। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने एक सहाबी जिनका नाम उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला ने उनको बुलाया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेहतरीन आवाज अता फरमाई और बेहतरीन कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह की शान जिसको चाहे जो अता फरमा और उनकी ये शान थी हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला ने की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए फरमाया बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले उबई बिन काब हैं। सरकार की बशारत है एक आदमी दूसरे के लिए कहते ये बेहतर पढ़ता है फला कहते ये बेहतर पढ़ता है दूसरा कहते ये बेहतर पढ़ता है जिसके लिए अल्लाह का रसूल कहते ये बेहतर पढ़ता है वही तो सनद है। सरकार ने फरमाया बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने उनको बुलाया फरमाया उबई तुम हमारे इमाम बन जाओ हम सब तुम्हारे मुक्तदी बन जाए तरावी पढ़ाओ हाफिज कुरान कारी कुरान थे वो इमाम बन गए सारे सहाबा मुक्तदी बन गए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के दौर में पहली मर्तबा बाकायदा जमात के साथ तरावी अदा की गई और सिलसिला शुरू हो आपने शुरू किया उसके बाद सिलसिला चलता रहा मुख्तलिफ मसाजिद में जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ता रहा ये सिलसिला फिर अरब से निकलकर अजम फिर शर्क से गर्ब तक जुनूब से शुमाल तक सिलसिला फैल गया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर की हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है जिसने दीन में कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जो दीन के लिए माविन है मददगार है दीन की तबलीग का जरिया है जितना सवाब उस पर अमल करने वाले को उतना ही उसके जारी करने वाले जितना सवाब अमल करने वाले को उतना ही उसके जारी करने वाले को। अब आपने सुन लिया कि तरावी की बाकायदा जमात सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के दौर में हुई आपने कराई जब तक ये जमात होती रहेगी और कब तक होती रहेगी इंशाअल्लाह कयामत तक होती रहेगी कयामत तक तरावी होती रहेगी लोग कुरान पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे कयामत तक इसका सवाब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की रूह मुबारक को पहुंचता है। ये है सदका जारिया सवाब जारिया इसको कहते सवाब जारिया जारी है जिंदगी में ऐसा काम करो कि दुनिया से चले जाओ सवाब का सिलसिला जारी है। ऐसा काम किया फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जब तक होती रहेगी सवाब मिलता रहे। अब शहादत हो गई सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला फिर दौर आया उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला इसी तरह तरावी होती रही उनकी शहादत हो गई दौर आया हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला तरावी होती रही। एक रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद के बाहर से गुजर रहे हैं अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही मुसलमान तरावी पढ़ रहे, आवाज आ रही, जैसे आपने आवाज सुनी अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। किसके लिए दुआ की? हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने, क्योंकि उन्होंने तरावी को बाकायदा जारी किया था, बाकायदा इत्तेमाम जमात का इत्तेमाम किया था। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने की आंखों से आंसू जारी हैं, मुबारक हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहुम्म नव्विर कब्र उमर कमा नव्वरा मसाजिद अल्लाह बिल कुरान, ऐ अल्लाह उमर की कब्र को अपने नूर से रोशन कर दे जिसने तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया, तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया। जब तक ये तरावी होती रहेगी फारूक आजम की रूह मुबारक को सवाब पहुंचता रहे। और हकीकत में देखा जाए तो तरावी रमजान की जीनत है, तरावी रमजान की रौनक है। अगर रमजान से तरावी को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, बल्कि मैं यहां तक कहूं कि अगर तरावी नहीं होती तो हाफिज ही कोई नहीं होता। फिर इसीलिए करते ना कि सुनाएंगे, सुनाने के लिए करते ना, जल्दी जल्दी पढ़ो उसको, रमजान आ रहा है सुनाना है। बल्कि जो सारे साल नहीं पढ़ते वो भी रमजान में पढ़ते, रजब से ही शुरू कर देते हैं। या माशाल्लाह कुछ उफाद बैठे जो समझ रहे मेरी बात, सारे साल नहीं पढ़ते लेकिन खैर ये लोग तो पढ़ते होंगे बेचारे, ऐसे नहीं नाराज हो जाए। रजब शुरू हुआ, पढ़ना शुरू, दौर शुरू, देखो 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, शुरू कर दो सुनाना है, इधर सुना रहे उधर सुना रहे, और करीब आया, जल्दी 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 है। और एक और बात, ये सुनना और सुनाना ये भी सरकार की सुन्नत, हाफिजों को अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए, ये दौर करना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। हुजूर नूर अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया करते, और जिस साल सरकार ने पर्दा फरमाया उस साल 2 मरतबा दौर किया। सुनना और सुनाना ये भी सरकार की सुन्नत, इस पे भी सवाब। तो तरीका क्या है? रमजान आ रहा है, सुनाना है, फट रही सुबह शाम दोपहर रात सुनाना है, एक फिकर है जहन में, कुरान पढ़ रही। तो अगर तरावी ना होती तो हो सकता है कोई हाफिजी ना हो सुनाने के लिए, और जैसे ही रमजान का चांद हुआ वैसे ही रौनक शुरू हो, लोगों के कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ जा रहे तरावी पढ़नी। लेकिन होना ये चाहिए कि पूरे रमजान पढ़नी, इसमें भी डंडी मार देते बीच में, 10 दिन तक पूरी मस्जिद भरी हुई, उसके बाद कम होने शुरू हो, 5 सफे रह गई, फिर पता चला 4 रह गई, फिर 3 रह गई, उसके बाद जब खत्म शरीफ करीब आया फिर बढ़नी शुरू, और जिस दिन खत्म उस दिन पूरी मस्जिद भरी हुई मिठाई। खैर बहरहाल आप लोग तो ऐसे नहीं है, मैं और लोगों की बात कर रहा हूं। होना ये चाहिए कि जिस हाफिज के पीछे आप पढ़ रहे हैं हर काम छोड़कर पूरा कलामे पाक कोशिश करें कि वहीं मुकम्मल। और आजकल तो लोगों के कारोबारी जहन है, जो कारोबार करते हैं वो ढूंढते हैं यार 6 रोजा ढूंढ लो, 5 रोजा ढूंढ लो, 10 रोजा ढूंढ लो, 6 दिन में फारिग। आपने कहा ना कलाम सुनना है तो 6 दिन में सुन लो या 20 दिन में सुन लो बराबर है, या पूरे महीने सुन लो। हमने 6 दिन में सुन लिया, बाकी अपने दुकान पर बैठेंगे काम करें, अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन होना ये चाहिए कि पूरे रमजान कोशिश करें कि बाकायदा जमात के साथ फिर आप पढ़ें, और जब कुरान करीम मुकम्मल हो जाए तो सूरह तरावी पढ़ें। पूरे रमजान है, तरावी 5 रोजा 10 रोजा नहीं है कि 10 रोजा करने में फारिग, 10-5 में फारिग, 6 में फारिग, कोई 20 में फारिग हो गया, कोई 27 में, नहीं पूरे रोज पूरे महीने। तो अगर इस तरह हम इत्तेमाम करेंगे पूरे महीने अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, पूरे महीने रहमतें नाजिल हों। तो ये तो पहली इबादत है रमजान की, सबसे पहली इबादत चांद देखने के बाद कौन सी इबादत? तरावी। तो अब तो पढ़ेंगे ना तरावी इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसके बाद क्या है? रोजा। रोजा اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو پوری نشست اس پہ ہو جائے گی. میں صرف ایک نقطہ بیان کر کے پھر میں آگے چلوں، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہیں. رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری نشست ہے، اب اس کے بعد ہوگی. روزہ سرکار نے فرمایا شیطان کے لیے ڈھال ہے. پہلے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی نا تو ڈھال ہوتی تھی، ڈھال لوہے کی، اور اس کے بیچ میں کنڈا ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال. اگر سامنے والا وار کرتا تھا تو یہ ڈھال آگے کر دیتا تو تلوار اس پہ لگ جاتا، اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال. فرمایا روزہ شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال. جب یہ حملہ کرتا ہے روزہ ڈھال کی طرح آگے آتا ہے، انسان کو بچا لیتا. روزہ تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کا ذریعہ. روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر ضبط پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور کیسی بات، آپ دیکھ لیں ساری عبادتیں جو ہیں ظاہر ہیں، روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے اور رب کے درمیان ہے، صرف بندے اور رب کے درمیان. تو آپ کہیں گے تو ساری عبادتیں بندے اور رب کے درمیان، وہ صحیح ہے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا نماز پڑھی، اگر حج کیا تو سب دیکھ رہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتا. کسی نے روزے کو دیکھا؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ نظر ہی نہیں آتا. ایک آدمی کھانا کھا کر آ جائے، منہ صاف کر کے آ جائے، میرا روزہ ہے، کوئی بتا سکتا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتا. اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، بس چھپ کر اگر کھا لے، چھپ کر اگر پی لے تو لوگوں کو تو نہیں پتا نا. کمرے میں جا کے بند ہو کے پانی پی لیا، پیاس لگ رہی ہے پی لو، کون دیکھ رہا؟ چھپ کے کھانا کھا لو، کون دیکھ رہا؟ نہیں. جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک دیکھنے والا دیکھ رہا، اور وہ ایسا دیکھتا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے، ایسا رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے. جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، جیسا تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے. تو اب کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیسا ہی گناہگار مسلمان ہو، کیسا ہی خطا کار مسلمان ہو، لیکن رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھ لیتا ہے، چھپ کر بھی نہیں کھاتا، اس لیے اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا نہیں. بلکہ چھپ کے کھانا تو الگ بات ہے، پورا دن گزر گیا، اطاعت کا میں مظاہرہ بتا رہا ہوں، پورا دن گزر گیا روزے میں، ساری چیزیں سامنے رکھی، آپ کے ہاتھ میں کیا طاقت نہیں کو اٹھا کے کھا لیں؟ طاقت ہے، اٹھا کر کھا سکتے ہیں، نہیں کھاتے کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں. گھڑی دیکھ رہے ہیں کتنی دیر رہ گئی، بعض لوگ اسی طرح ٹائم گزارتے ہیں، دسترخوان لگا دیا، پکوڑے لگا دیے، سب کچھ، کوئی بیوی کے ساتھ مل کے کام کروا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خیر وہ ٹائم گزار رہے ہیں، اس دیکھ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے، کھا نہیں سکتے لیکن دیکھ کے تو دل تسلی تو ہو رہی ہے نا. پکوڑے ہیں، دہی بڑے، بہت سے تو پلیٹ میں بھی نکال لیتے پہلے سے، صرف کھانے کی دیر ہے. کتنی دیر ہے؟ پانچ منٹ. یار ابھی بھی پانچ منٹ، کیا ہوا آج امام صاحب کیا بھول گئے؟ مؤذن صاحب کو یاد نہیں رہا؟ دیکھو کہیں سوتے تو نہیں رہ گئے؟ اتنی بے چینی، لیکن کھا نہیں رہے. اگر ایسی بے چینی تو کھا لو، نہیں، اللہ کی رضا دے. کیسا مظاہرہ ہے، کیسی عظیم و شان عبادت، ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، بھوکے ہو، پیاسے ہو، بھوک پیاس سے بے چین ہو رہے ہو لیکن کھاتے نہیں، اس لیے اللہ کی رضا. تو رمضان میں تو اطاعت کا اتنا مظاہرہ، اور رمضان کے بعد، رمضان کے بعد کیا ہوا؟ کیا معاذ اللہ دوسرا خدا ہے؟ وہی خدا تو ہے جو رمضان میں تھا، وہی اس کے بعد بھی. یہ رمضان کا مہینہ یہ پریکٹس کرا رہا ہے آپ کو اطاعت خدا بندی کی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی اطاعت تم رمضان میں کر رہے ہو؟ جس طرح تم نے ایک مہینہ اتنی اطاعت میں گزارا کہ اس کے حکم کے بغیر ایک منٹ پہلے بھی کچھ نہیں کھایا، تو پورا سال اگر اس طرح گزار دو تو رحمت ہی رحمت ہو جائے، کرم ہی کرم ہو جائے. اور ایک اور بات ہے، جتنی چیزیں رکھی ہیں وہ حلال ہیں یا حرام؟ हलाल ही होंगे ना, हराम तो नहीं होंगे, कोई हराम ही होगा जो हराम खा। सारी चीजें हलाल हैं, पाक हैं, तैयब हैं, नहीं खा रहे क्यों? अल्लाह की रजा नहीं। घड़ी देख रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 1 सेकंड, अजान हुई तो खाना शुरू। हलाल चीजें जब तक टाइम नहीं हुआ नहीं खाते, तो रमजान के बाद फिर हराम चीजें उसके हुक्म के बगैर क्यों खा रहे? उसका हुक्म नहीं है ना कि हराम की तरफ जाओ, हराम की तरफ देखो, हराम की तरफ हाथ बढ़ाओ, हराम की तरफ चल कर जाओ। क्यों जा रहे हो रमजान के बगैर, रमजान के अलावा? क्या खुदा माजल्ला कोई और है? नहीं, वही खुदा रमजान में है, वही उसके बाद। रमजान में इतनी इताअत और उसके बाद इतनी नाफरमानी। ये रोजा हमें बता रहा है, जिस तरह एक महीना तुमने गुजारा है, अगर इस तरह पूरी जिंदगी गुजार दो तो कामयाबी कामयाब हो, पूरी जिंदगी गुजार दो तो कामयाबी कामयाब। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही, किसी ने पूछा दुनिया का हाल क्या है, दुनिया का हाल क्या है? एक जुमला फरमाया, और बुजुर्गों की शान यही है कि एक जुमले में पूरी तकरीर, एक जुमले में पूरी किताब। हम पूरी किताब लिख दें वो बात नहीं बयान कर सकते जब वो एक जुमले में कह दे, हम एक घंटे की तकरीर में बयान नहीं कर सके जब वो एक जुमले में कह दे, ये अल्लाह वालों की शान। किसी ने पूछा दुनिया क्या है, फरमाया सुनो दुनिया चंद रोजा है, दुनिया चंद रोजा है और उसमें भी हमारा रोजा है। कैसी बात, दुनिया चंद रोजा है उसमें भी हमारा रोजा है, नहीं समझे? ये बड़ी मुश्किल है। चलो खैर मैं समझा दूं, रोजे में क्या होता है, खाने पीने की चीजों का परहेज है ना, और सिर्फ खाने पीने की चीजों का नहीं, हर किस्म के गलत काम का परहेज। गलत तरफ देखना, गलत तरफ हाथ बढ़ाना, हराम की तरफ देखना, हराम की तरफ जाना, हराम की तरफ हाथ बढ़ाना, हराम के उसूल की कोशिश करना, हर चीज पाबंदी। रोजे में पाबंदी, हम सिर्फ खाने पीने की पाबंदी करते हैं बाकी नहीं। उन्होंने कहा दुनिया चंद रोजा है इसमें भी हमारा रोजा है। क्या मतलब? जिस तरह रोजे में एक पूरे दिन तुम ऐसे गुजारते हो, हर किस्म के खाने पीने की चीजों से परहेज कर देते, नहीं खाते, गलत तरफ नहीं जाते, गलत निगाह नहीं डालते, हराम की तरफ चलकर नहीं जाते, हराम के हुसूल की कोशिश नहीं करते, इसी तरह दुनिया चंद रोजा है इसमें भी हमारा रोजा है, यानी ये चंद रोजा दुनिया को इसी तरह गुजारो जैसे तुम रोजे में हो। जिस तरह तुम रोजे में इताअत करते हो पूरी जिंदगी को ऐसे ही गुजारो, दुनिया चंद रोजा है और इसमें भी हमारा रोजा। कैसी बात है, एक जुमले में सब कुछ कह दिया। अगर समझने वाला हो तो एक घंटे की तकरीर की जरूरत नहीं, एक जुमला ही काफी, और ना समझे तो सब कुछ बयान कर दो फिर भी जैसे पहाड़ पे पानी की बूंद गिरी फिसल गई, ऐसे ही हो जाता। तो दूसरी इबादत रोजा, तो इस पर मैं रोजे के फजाइल पर इसी पर इक्तफा कर रहा हूं, क्योंकि अभी आगे और बहुत सारी चीजें बयान करनी। तो इस माह मुबारक को इस तरह गुजारना है कि नमाज तरावी और रोजा, कोशिश करें कि आप पूरे महीने के रोजे रखें इंशाल्लाह, और पूरे महीने बाकायदा तरावी पढ़ें, उसका इहतमाम करें। और जब आप अभी से सोच लेंगे, नियत कर लेंगे, बाकायदा इहतमाम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होगी, काम पूरा हो जाएगा। इसलिए कि हमारे बस की बात नहीं, ये उसकी तौफीक होती है जो इंसान करता है, अगर उसकी तरफ से तौफीक ना हो तो इंसान कर ही नहीं सकता, ये उसका करम होता। तो उसी से करम मांगे, उसी से रहम मांगे, उसी से मगफिरत मांगे, मौला तू ही हमें तौफीक देगा तो हम कर सकते हैं, और अगर तेरी तरफ से तौफीक नहीं हुई तो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं, नियत कर ली सवाब अभी से शुरू हो गया, और जब रमजान शुरू हो गया तो उसके साथ कोशिश भी कर। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहु अम्मा नवालू इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा हूं, खालिस मेरे लिए है रोजा, अल्लाह तबारक व तआला के, उसकी रजा के लिए, और ताल्लुक उसी की जात से, कोई नहीं देख रहा फिर भी नहीं खा रहा इसलिए कि अल्लाह की रजा। तो ये ऐसी इबादत है। इसके बाद एतिकाफ है। अगर कोई शरई उजुर ना हो और आदमी आराम से अपने, कोई ऐसी परेशानी नहीं है और वो चाहता है कि एतिकाफ में बैठे, तो वो एतिकाफ कर सकता है। शब कदर उसके बाद शुरू हो जाएगी, बल्कि 21वीं शब से और 29वीं तक ये सब ताक रातों में शब कदर है, ये शुरू हो जाएंगी। उसमें भी इबादत और रियाजत के साथ उन रातों को गुजारना चाहिए। अक्सर लोग उन रातों में भी खरीदो फरोख्त में लगे हैं, कोई कारोबार में है, कोई किसी चीज में है। कोशिश करनी चाहिए हत्तुल इम्कान के उन रातों को हम जाकर गुजारें, ताकि वो एक रात इबादत में गुजार दी, हजार महीनों से बढ़कर सवाब हमने ले लिया। एक कोशिश ये करें, गुज़िश्ता साल भी हमने आपको बताया था कि जितने हजरात मौजूद हैं और जो भी बाद में इंटरनेट पर ये नशिस्त सुनेंगे, उनको चाहिए कि अभी से ये नियत कर ले कि रमजान मुबारक में एक कलाम पाक जरूर मुकम्मल करेंगे, एक कलाम पाक। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जिंदगी इतनी मसरूफ है और मशीनी जिंदगी, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हो, एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया। आप देखें, रमजान अभी गया, पूरा साल गुजर गया, फिर रमजान पता ही नहीं चला। और आदमी इतना मसरूफ है कि कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात मसरूफ। हाँ, कुरान पढ़ते ही जब कोई मरेगा तब पढ़ेंगे, स्वयं हुआ चलो भाई कुरान खानी हो रही लेके बैठ गए पढ़ लिया, और जब हुआ बंद करके रख, यही कैफियत है ना, सबका हाल यही यही है ना, नहीं बोलेगा कोई, हालांकि है यही यही कैफियत है। 40वें में पढ़ लिया, 10वें में पढ़ लिया, 20वें में पढ़ लिया, और अगर ये चीज ना हो तो पढ़े भी नहीं। तो इसलिए इस माह मुबारक में कोशिश करनी चाहिए कि एक कलाम पाक हर आदमी जरूर जरूर मुकम्मल करे। उसमें क्या होगा कि कम से कम जिंदगी में एक मरतबा तो कलाम पाक लिखा जाएगा नामे अमान में कि इसने पढ़ा, एक मरतबा तो पढ़ा ही पढ़ा, और जिंदगी रही तो और पढ़ते रहे, इसकी बड़ी बरकत है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर में सूरह बकरा शरीफ पढ़ी जाती है शैतान दूर भाग जाता, शैतान दूर भाग जाता, यहां शैतान तो घर में मौजूद, पढ़ ही नहीं रहा कोई, उठाकर सजाकर जुजदान में ताक में रख दिया ऊपर। कुरान ताक में रखने के लिए है, जब कोई कौल कसम लेनी है कुरान ले आओ, हाथ रखो, बताओ सही है गलत, कुरान कसमे लेने के लिए है। बच्ची को विदा कर रहे कुरान ले आओ, इसके साए में विदा कर दो, कुरान इसलिए है, कुरान पढ़ने के लिए है, कुरान समझने के लिए है, कुरान अमल करने के लिए। इसलिए हर शख्स पर लाजिम है, जरूरी है। आप अहले तरीकत हैं, अहले मोहब्बत हैं, आप पर ज्यादा लाजिम है, वैसे तो हर मुसलमान को भी चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि आप अभी से नियत कर लें कि रमजान मुबारक में एक कलाम पाक मैं जरूर मुकम्मल करूं, और पूरा महीना आप कर सकते, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। एक आदमी है जो कारोबार करता है, एक है जो जॉब करता है, एक है चल फिर के काम करता है, हर एक के मशागिल मुख्तलिफ हैं, मसरूफियात मुख्तलिफ हैं, पूरा महीना आपके पास मौजूद है, बल्कि 30 दिन के बजाय आप 29 दिन का हिसाब लगाएं और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, इंशाअल्लाह एक या दो कलाम पाक मुकम्मल हो सकता है। अगर 1.5 पारा आप रोज पढ़ेंगे 20 दिन में कलाम पाक मुकम्मल, कोई ज्यादा पढ़े तो और जल्दी हो जाए, और अगर कोई आराम से पढ़ सकता है 2 सफ़े 3 सफ़े जैसा भी हो, आप सहरी में पढ़ सकते हैं, सहरी से पहले पढ़ सकते हैं, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, मगरिब से पहले, तरावी के बाद, कितना टाइम हमारे पास, 24 घंटे आपके पास हैं। उन 24 घंटों में अगर 1 घंटा आप कलाम पाक के लिए निकाल लें, इंशाअल्लाह ताला कलाम पाक मुकम्मल हो जाए। और इस महीने में इसलिए भी हम जोर दे रहे हैं कि हर अमल का सवाब दुगना है। सरकार ने फरमाया हर हर्फ पर 10 नेकी, अलिफ लाम मीम, 30 नेके आपके नामा अमाल में, और अगर यही अलिफ लाम मीम रमजान में पढ़ा तो 30 नेकिया नहीं है, इससे दुगना सवाब। तो सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने में 30 नेकिया, जो पूरा कुरान पढ़ जाए उसकी नेकियों को शुमार कौन कर सकता है। तो इसलिए आप अभी से नियत कर लें कि हमें ये करना है, अपने मामूलात को उसी लिहाज से तरतीब दे लें, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे जब आप ये मुकम्मल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितनी रहमतें नाजिल होंगी, कितनी बरकतें नाजिल होंगी। कुरान घर में पढ़ा जाएगा, वहीं पर रहमतों का नुजूल हो जाएगा, बरकतों का नुजूल हो जाएगा, शैतान दूर भाग जाएगा। अव्वल तो हमें पूरे साल ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम रमजान मुबारक में पढ़ें तो देखें कितनी बरकतें हैं। और नामे आमाल में नेकियों का शुमार कोई नहीं कर सकता। एक चीज तो ये है, पहली चीज, अब प्रेजेंट माइंड के साथ रहिएगा, क्योंकि अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूं, सारी चीजें बताऊंगा फिर आखिर में पूछूंगा क्या क्या बताया, ऐसा नहीं इधर से सुन के इधर से निकालते रहना। पहली चीज है, एक कलामे पाक मुकम्मल करना है, करना है या नहीं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह में भी बड़ी गुंजाइश है, खैर बहरहाल बाद में देखेंगे। उसके बाद दुआए हिज्जुल बहर का चिल्ला, यह आप हजरात को मालूम है कि हर शाबान की आखिरी दिनों में हम इसके मुतालिक जो जो भी करना चाहते हैं उनको इजाजत देते हैं। लोग फोन के जरिए, ईमेल के जरिए और खुद दरगाह शरीफ में हाजिर होकर, कोई खत के जरिए, मुख्तलिफ जराए से लोग इजाजत लेते हैं। खानवादा अशरफिया में इसका खास एहतमाम है, इस चिल्ले का, जो रमजान मुबारक की पहली तारीख से शुरू होकर ईद की 10 या 11 को खत्म, 29 या 30 रोजे रमजान मुबारक के, जैसे चांद हो, अगर 30 हो तो 10 रोजे बाद में रख लीजिए ईद का रोजा छोड़ के, और अगर 29 हो तो 11 रख लीजिए। ये सिलसिला चल रहा है शुरू से। इसके अंदर अंडा, मछली और गाय के गोश्त का परहेज इस चिल्ले के दौरान होता है। जो लोग भी करते हैं इन तीन चीजों का परहेज करते हैं 40 दिन तक, जब तक ये दुआ पढ़ी जाएगी 40 दिन तक परहेज रहेगा। फिर इसमें इशारात हैं, जो लोग करते रहे हैं उनको मालूम है। तो जिन लोगों ने पिछले साल इशारात के साथ चिल्ला किया है, इस साल भी वो इशारात के साथ करेंगे। अब उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, वक्त मुख्तसर है, जो लोग करते रहते हैं उनको पता है कि इशारात क्या है। जो पहली मर्तबा कर रहे हैं वो शुरू से आखिर तक एक मर्तबा दुआए जुल बहर पढ़ लें, शुरू से आखिर तक। उसमें एहतिसाम भी शामिल है, दुआए जुल बहर भी शामिल है, दुआए मकूरी आदा भी शामिल है, ये सारी चीजें उसमें शामिल है, और उसके पढ़ने का तरीका भी उसी दुआ में लिखा हुआ है। तो जो पहली मर्तबा पिछले साल जिन्होंने किया या इस साल पहली मर्तबा करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानी यह है कि शुरू से आखिर तक एक मर्तबा पूरी दुआ पढ़ लें, और उसके बाद इसका सवाब साहिब हिफ्जुल बहर हजरत शेख अबुल हसन शादली रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक को पहुंचा था। सवाब का जो तरीका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा उम्मतुल मोमिनीन बुजुर्गाने दीन इन सब का करके, खुसूसन शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सवाब हो, जो तरीका हमने आपको बताया। तीसरी चीज ये है कि जो लोग ये दुआ का चिल्ला नहीं कर सकते, दुआ इज़ुल बहर का, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए भी हमने ये आसानी रखी है, क्योंकि हर एक की मसरूफियात, बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई दुकान पे बैठता है, कोई कहीं बैठता है, उनके लिए आसानी यह है कि वो अल्लाह उस्समद का चिल्ला कर ले। अल्लाह उस्समद, अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा इसमें पाक है कि जो इंसान भी पढ़ेगा उसके रिजक में, रोजगार में बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत है, करम ही करम। तो इसमें परहेज की जरूरत नहीं है, 3125 मर्तबा रोज अगर आप पढ़ेंगे, 3125, तो 40 दिन में इंशाअल्लाह 1,25,000 हो जाएगा। यकुम रमजान से शुरू कर दीजिए, ईद की 10 या 11 को खत्म हो जाए। तो जो लोग दुआएं इज़ुल बहर का चिल्ला नहीं कर सकते, जो मर्द या जो ख़वातीन, उनके लिए भी इजाजत है कि वो अल्लाह उस समद का चिल्ला कर। और उसका तरीका ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो 100 मरतबा दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद आप पढ़ लो, बड़ा हो छोटा हो, 100 मरतबा। और वो पढ़ने के बाद 3125 मरतबा अल्लाह समद, और इख्तिताम पर फिर 100 मरतबा दुरूद, और उसके बाद दुआ 40 दिन तक यही मामूल। लेकिन इसमें एक काम ये करें कि टाइम मुकर्रर कर ले, अगर टाइम मुकर्रर हो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, जिस टाइम पर आप रोजाना पढ़ सकें वो ही टाइम रखें। अगर इत्तेफाक से कभी आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर एक टाइम होगा उसके ज्यादा फवायद। ये चीज आपने समझ ली। ये दूसरी तीसरी चीज थी, ये तीसरी थी दूसरी, शुक्र याद। इसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं आपके यहां में देख के पढ़ लेंगे। इसका बहुत आसान तरीका है, अब मैं आसान से आसान करता जा रहा हूं, फिर भी नहीं पढ़ो तो फिर अल्लाह हाफिज। हिज्जुल बैर का नहीं कर सकते तो अल्लाह उस्समद, और वो भी नहीं तो अस्तग़फार। और इसका तरीका इतना आसान है कि जब आप अपने काम के लिए सुबह निकले, रवाना हो कोई जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए, कोशिश ये करें कि बावजू रहे, बावजू रहना जरूरी। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद सारा दिन अस्तग़फार पढ़ते रहे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह, सारा दिन पढ़ते रहे। वो तस्बीह होती है कटकट वाली, काउंटर को आप हाथ में ले लें, पढ़ते रहे। आप बस में बैठे हैं तो जारी है, स्कूटर पे बाइक पे जा रहे हैं तो जा रही है, गाड़ी में है कहीं भी है पैदल जा रहे हैं, मुसलसल पढ़ते रहे। अगर दरमियान में बात करनी हो, दुरूद शरीफ पढ़ के रोक दिया, बात कर ली, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर शुरू कर दो। पूरे दिन में जितना भी आपने पढ़ा वो उसके अंदर फिगर आ जाएगा, वो जो तस्बीह है उसमें फिगर आ जाएगी, इतना आपने उसको लिख लिया। उसके बाद 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर ली, दूसरे दिन फिर सुबह 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर शुरू कर दो। जब वो उसकी तादाद 1.25 लाख हो जाए तो फिर आप हमसे राब्ता करें, फिर हम अगला मरहला आपको बताएंगे कि आगे क्या करना। इस तरह करने में तो आप 40 दिन से पहले कर सकते हैं, मुसलसल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि जितनी देर आप पढ़ेंगे वो तमाम वक्त इबादत में शुमार होगा, और जितनी देर पढ़ेंगे शैतान दूर रहेगा, रहमान करीब रहेगा। जितनी देर पढ़ेंगे झूठ से, गीबत से, चुगली से, किसी की दिल आजारी से, फहज गोई से, हर चीज से आपकी जबान महफूज, मुसलसल जिक्र में लगी हुई। और अस्तग़फार गुनाहों का कफारा, अस्तग़फार गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया। जितनी अस्तग़फार पढ़ी जाएगी, और रमजान मुबारक के महीने में खालिक़े कायनात की रहमतें नाज़िल होंगी, अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। कितनी चीजें हो गई, अब इसके बाद आखिरी शबे कदर, ताक रातों में 21वीं से कब तक, 29वीं तक, बीच का गायब 21वीं, इसके बाद फिर और उसके बाद, अच्छा ठीक, मैंने कहीं और आगे नहीं बढ़ा, चले खैर जो बता दिए यही कर लो तो बड़ी बात। अब इसमें क्या है, शबे कदर में असल में उसमें मसला ये होता है कि ईद करीब होती है, हर एक को शॉपिंग की लगी हुई, कोई जूता लेने जा रहा है तो कोई जूता मारने जा रहा है, कोई कुछ करने, खैर बहरहाल कोई कुछ करने जा रहा है अपने अपने तौर पे। लेकिन उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि उस रात में भी, अगर आपको शॉपिंग भी करनी है आप अव्वल रात में कर लें, बाद में आप चले, या ताक रातें रखी इसीलिए हैं, अब 21वीं है तो 22वीं तो नहीं है ना, तो उसमें शॉपिंग कर लो, 23वीं में फिर बैठ जाओ। जरूरी है कि इसी रात में निकलो, नहीं इसी रात में निकलेंगे, जागने की रात है तो जागने की रात है, रोडों पे घूमने की रात है, मस्जिद में बैठकर इबादत करने की रात है, घर में बैठकर इबादत करने की रात है। तो उस वो जो रातें हैं, जितनी भी मुकद्दस रातें हैं, ताक रातें, उसमें आप किसी भी काम के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मसले के लिए बेहतरीन अमल, एक हजार मरतबा सूरह इखलास शबे कदर में, एक हजार मरतबा सूरह इखलास। उसका तरीका यह है कि, लेकिन ये चलते फिरते नहीं पढ़नी है कि वो तस्बीह लेके काउंटर इधर से उधर घूम रहे, कुल अल्लाह अल्लाह समझ, ऐसे नहीं करना है, एक ही जगह बैठ के पढ़नी, तब फायदा है। मुसल्ले पर बैठकर खुशू खुशू के साथ अपने जहन से तमाम ख्यालात निकाल कर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। पहले कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद 1000 मरतबा सूरह इखलास। सूरह इखलास जानते हो ना? अगर इखलास होगा तो जरूर जानते हो, नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर 100 मरतबा दुरूद पाक, और जब ये हो जाए तो फिर दुआ के लिए हाथ उठा दो। और जो सवाब का तरीका, इसाले सवाब का, जो आप तमाम को मालूम है कि सबसे पहले सरकार की बारगाह में सहाबा उम्मातुल मोमिनीन ताबईन तबे ताबईन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन, उसके बाद अपने मशाइख तरीकत दुआ आराम फरमा है, और उसके बाद अपना मसला पेश करना। ठीक, तो ये एक ऐसा अमल है कि जिस काम के लिए भी आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। एक तो ये अमल मकबूल, और दूसरे जिस रात में पढ़ा जा रहा है वो भी मकबूल, जिनको पहुंचाया जा रहा है वो भी मकबूल, तो फिर रद्द करने में कौन सी चीज रह गई? कबूल ही कबूल है, ये भी मकबूल, रात भी मकबूल, तो इंशाअल्लाह पढ़ने वाला भी बारगाह खुदावंदी में मकबूल। ऐसी मुकद्दस और बाबरकत और अजमत वाली ये सूरह मुबारक। एक सहाबी थे, उनका अमल ये था कि जब कोई रकात नमाज की पढ़ते थे, कोई सूरत पढ़ने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास, जब भी कोई सूरत पढ़े पहले 3 मरतबा सूरह इखलास, इसके बाद कोई सूरत। अब जब तन्हा पढ़ते थे तो पता नहीं चला किसी को। एक दिन सफर में सहाबा के साथ गए, सहाबा ने कहा आप नमाज पढ़ाएं, उनको आगे कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है, नियत बांध ली। सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, फिर कोई सूरत पढ़ी, फिर रकात की, उन्होंने कहा ये क्या मसला, दूसरी रकात पढ़ाई फिर ये, उनका ये तो बात सही नहीं भाई, या तो सूरह इखलास पढ़ लो या कोई सूरत पढ़ लो, 3 मरतबा ये पढ़ रहे हो फिर सूरत भी मिला रहे। उन्होंने कहा बस मैं कर रहा हूं, ये मेरा अमल, ठीक है, हम सरकार की बारगाह में शिकायत करेंगे, पूछेंगे। सफर से वापिस आ गई, पहुंचे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा कौमी व अबी, हुजूर माँ बाप कुर्बान, ये एक मसला हो गया। फरमाया क्या हुआ? ये फला साहबी हमारे साथ गए सफर में, हमने इनको इमाम बना दिया, सब मुक्तदी बन गए, अरे इन्होंने नमाज तो अजीब पढ़ाई। फरमाया क्या हुआ? सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत पढ़ते, फिर रकात की दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास, फिर कोई सूरत। फरमाया तुमने उससे पूछा ऐसा अमल क्यों करता है? बुला उसको। बुलाया, फरमाया तुम ऐसा करते हो? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं करता हूं। क्यों करते हो? सरकार मुझे इस सूरत से मोहब्बत, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत, अल्लाह की अहदियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद होने का जिक्र है, वलम यूलद होने का जिक्र है, उसके वाहिद होने का जिक्र है, उसके यकता होने का जिक्र है, मैं मोहब्बत करता हूँ इसलिए पढ़ता हूँ। फरमाया कर तू सच कह रहा है, तुझे जन्नत में ले जाने के लिए यही काफी है, जन्नत में ले जाने के लिए यही काफी है। पता चला इंसान किसी सूरत को अपने विर्द में रख ले, मोहब्बत करे, वही सूरत उसे जन्नत में ले जाए। इसलिए किसी न किसी सूरत को, किसी आयत को अपने विर्द में जरूर रखो, बख्शीश के लिए वही काफी। तो ऐसी अजीम शान सूरत, तो जब आप इसको खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें नाजिल हों। मसाइल हर एक के मुख्तलिफ हैं, कोई बच्चियों की शादियों की तरफ से परेशान है, कोई कारोबार की तरफ से परेशान है, कोई औलाद की तरफ से परेशान है, कोई सेहत की तरफ से, मुख्तलिफ परेशानियां, हर इंसान का मसला अलग है, लेकिन ये सूरत सारे मसाइल का हल, सारे मसाइल का हल है। आखिर में दुआ करें सारे मसले अल्लाह की बारगाह में पेश कर। और एक सबसे प्यारी दुआ जो हमारे पीरो मुर्शिद और वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने बताई, फरमाया कुछ बयान करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ ये दुआ करो मौला तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा, अपने नेक बंदों में मेरा नाम लिख ले, अपने महबूब बंदों में मेरा नाम लिख ले। जब वो राजी हो गया पूरी कायनात राजी हो, किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। ये राजी हो जाए मेरा काम हो जाए, वो राजी हो जाए तो मेरा काम हो जाए, ये लड़की वाले राजी हो जाए तो शादी हो जाए। तावीज लेने आते ना, सब राजी है, वही राजी नहीं, उनका अच्छा तावीज देते। लड़की कह रही लड़के वाले राजी हो जाए तो मेरी शादी हो जाए, वो कह रहे बच्चा हो जाए, वो कह रहा ये राजी हो जाए तो मेरी तरक्की हो जाए। दुनिया वालों को राजी करने के लिए तैयार है, और जिसकी रजा पर सबकी रजा मौकूफ है उसको छोड़ दिया। ये नहीं सोचते वो एक राजी हो जाए तो पूरी कायनात राजी हो जाए, उसको बुला दिया। अगर उसको राजी करने की कोशिश करते ये सब के सब खुद ब खुद राजी हो जाए। यही फर्क है हम में और अल्लाह के नेक बरगुजीदा बंदों में, कि हम इन दुनिया वालों को राजी करते रहे और वो सारी रात जाग कर उस खालिक कायनात को राजी करते। हम इनको राजी नहीं कर सके, और याद रखो ये कभी राजी नहीं होंगे, दुनिया वाले कभी राजी नहीं होंगे, कोई ना कोई जरूर नाराज। इसको राजी किया तो वो नाराज, उसको राजी किया तो वो नाराज। अच्छा इससे ज्यादा मोहब्बत है, मुझे पीछे बिठा दिया, अच्छा उसको आगे बुला लिया, इसको दावत में बुलाया मुझे नहीं बुलाया, फला को बुलाया उसको नहीं बुलाया, चैन नहीं। सब राजी नहीं हो सकते, कभी राजी नहीं होंगे, एक ना एक नाराज जरूर। और उस एक को राजी कर लो सब के सब खुद ब खुद राजी। उन्होंने एक को राजी किया, सब राजी हो, सब राजी हो। तो इसलिए इस दुआ में जहां तक अपने मसाइल आप बयान करें उसको सब रोशन, किसका क्या मसला है खालिक कायनात को बताने की जरूरत नहीं। अलीम बिजात सुदूर, दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है, तो नहीं जानता कि तुम्हारा क्या मसला है। अरे उसकी शान तो ये है कि जो तुमने सोचा नहीं वो भी जानता है, जो सोच रहे हो वो भी जानता है, जो आइंदा सोचने वाले हो वो भी जानते, ये उसकी शान। तो जो हम अभी सोच नहीं रहे आइंदा सोचेंगे वो जानता है, तो वो जानता है या नहीं कि मुझसे क्या मांगेगा, जानता है ना। तो उससे सिर्फ ये मांगो मौला अपनी रजा की सनद अता फरमा, अपने नेक बरगुजीदा बंदों में मेरा नाम लिख ले। अगर वो राजी हो गया, रजा की सनद मिल गई, इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। तो हमने कितनी चीजें बयान की, चार ने की। पहली चीज, इस माह मुबारक में एक कलामे पाक जरूर मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह, ठीक है। और उसका मैंने इसीलिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया कि आप अपनी मसरूफियात के हिसाब से, मर्द और खवातीन अपनी मसरूफियात के हिसाब से टाइम मुकर्रर कर लें। रमजान मुबारक में हमारी तरफ से टाइम की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कोशिश करें इस माह में एक कलामे पाक जरूर मुकम्मल। दूसरी चीज, दुआए जुल बहर का जिल्ला, जिन हजरात ने पिछले साल किया उनको जरूर चाहिए कि इस साल भी करें, ताकि ये कंटिन्यू रहे, बीच में गैप ना आए, क्योंकि ये जिस तरह ये चलता रहेगा इसके फ्यूज बरकात और आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो जहां से चले तो वहीं रहे, इसलिए वो जरूर करें। और जिस तरह उन्होंने पिछले साल किया, अगर इशारात के साथ किया तो इस साल भी इशारात के साथ, और अगर बगैर इशारात के किया तो बगैर इशारात, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने पिछले साल इशारात के साथ नहीं किया था, अब वो इस साल पूछ रहे हैं कि इशारा करें या नहीं करें। मैंने कहा था हम इशारा नहीं करें, तुम भी इशारा नहीं करना, हमारे इशारे को देखना, ऐसा नहीं बैठे बैठे इशारे करना शुरू कर दो, वैसे भी इशारे करना अच्छी बात नहीं। तीसरी चीज क्या थी, भूल गए, चलो शुक्रिया अल्लाह समझ, ये बहुत आसान कर दिया आपके लिए। 3125 आप रोज पढ़ें, 40 दिन में 1,25,000 हो जाएगा। इसकी इजाजत भी जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, जो मर्द खवातीन उन सब के लिए इजाजत है, तरीका हमने बता दिया। अगर तरीका आपको मालूम ना हो तो ये नसीह जो इस वक्त चल रही है ये इंशाल्लाह इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर www.ashrafia.net, उसमें आप दोबारा सुन सकते हैं, तरीका आप दोबारा उसमें समझ कर शुरू कर सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो दोबारा हम समझा दें। चौथी चीज, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, हाँ मेरे ख्याल से अब तो याद कर रहे हैं बैठे बैठे, ये उससे भी ज्यादा आसान है, अल्लाह समझ से ज्यादा। इसलिए कि ये आसान से आसान इसलिए मैं कर रहा हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ तो हो जाए, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर जो होगा फिर तुम खुद ही समझ लो। उसका तरीका भी आपको बता दिया, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, सारा दिन आप पढ़ते रहें, बावजू रहें, नमाजों की पाबंदी करें। वैसे तो रमजान में शायद सारी पाबंदी करते हैं, इसलिए कि पाबंदी ना करवाने वाला बंद होता है बेचारा, इसलिए खैर बारह नमाज की पाबंदी करें। और सवा लाख जब मुकम्मल हो जाए तो फिर हमसे राब्ता करें, हो सकता है कि हम इसी चिल्ले को दोबारा रिपीट कर दें या कोई और नया इसमें पाक आपको बता दें। ये इस्तगफार के मुताबिक। और इसके बाद पांचवी चीज शबे कदर की इबादत, 1000 मरतबा सूरह इखलास। वैसे तो शबे कदर के नवाफिल भी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। मुख्तलिफ उलमा ने, सूफिया ने अपनी कुतुब में, जैसे रमजान मुबारक के महीने में लोग उलमा अपनी किताबें छापते हैं, उसमें नवाफिल के तरीके वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन खास चीज जो हमने आपको बताई, जो किसी भी मसले के हल के लिए आप पढ़ सकते हैं, नियत रखें और उसके बाद खुशू खुशू के साथ बैठ जाइए, अव्वल आखिर 100-100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाते। तो ये तमाम ताक रातों में अगर आपने कर लिया तो आप यकीन करें कि जिस चीज के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन खाली नहीं लौटाएंगे। उम्मीद रखें अल्लाह की बारगाह से, उम्मीद रखें। तो ये तमाम चीजें हमने आपको बता दी, ये पांच चीजें जो खास कर आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज हो जो आप समझना चाहें तो वो फिर हम बाद में आपको बता सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने जहन में ये नियत रखें कि मुझे अपने गुनाहों से माफी मांगनी है सच्चे दिल के साथ, अपने रब के सामने जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन आइंदा जिंदगी में मैं उन गुनाहों का, उन खताओं का, उन गलतियों का इर्तिकाब नहीं करूं। पहली चीज, हर दुआ में सच्चे दिल से माफी मांगते रहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए माफी मांगे, मौला मुझे सिराते मुस्तकीम पर गामजन रख, मुझे नेक लोगों की सोहबत अता फरमा और मुझे शैतान के मकर फरेब से बचा, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखे, इस तरह आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। रमजान मुबारक के मुताबिक ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। इसके अलावा खत्म शरीफ है, जहां भी खत्म कुरान हो अगर आप जा सकें तो उसमें शिरकत करें, क्योंकि जब खत्म कुरान होता है वहां भी रहमतें बरकतें नाजिल होती, उसमें भी शिरकत करना बाईस बरकत है, बाईस रहमत है। तरावी में कोशिश करें, मसाजिद में 5 वक्त नमाज की कोशिश करें, और अगर मुमकिन नहीं तो घर में कम से कम वक्त पर नमाज जरूर अदा हो जाए। ऐसा ना हो कि कारोबार की वजह से, जॉब की वजह से या किसी वजह से आपकी नमाज खुदा ना खास्ता कजा ना हो जाए, वक्त पर अदा कर दें। पहली चीज मस्जिद में, दूसरी चीज घर में, और तीसरी चीज कम से कम वक्त पर जरूर अदा हो जाए। इन तमाम चीजों की पाबंदी करें, और सिर्फ रमजान ही में नहीं रमजान के बाद भी पाबंदी करें। तो इस तरह अगर हम इस मुबारक और मुकद्दस महीने को गुजारेंगे तो आप देखेंगे इसके पूरे फ्यूज़ो बरकात हमें हासिल हो। और एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं और मुख्तलिफ इस्तेमाल में, कि सखी दो किस्म के हैं, एक वो है जो घर बुलाकर देता है, एक वो है जो घर में आकर देता है। एक घर बुला के देता है, एक घर में आकर देता है। रमजान मुबारक सखी है, बैतुल्ला भी सखी है, दोनों सखी हैं। बैतुल्ला वो सखी है जो घर बुलाकर देता है, रमजान वो सखी है जो घर में आकर देता है। रमजान के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ी, फला शहर चलो वहां रमजान है, फला मुल्क चलो वहां रमजान है, जरूरत पड़ी नहीं, घर में बैठे हैं, रहमतें लेकर आ गया, बरकतें लेकर आ गया, करम लेकर आ गया, मगफिरत लेकर आ गया, हर चीज लेकर आ गया, रहमतों का मौसम है, बहार बनकर आ गया। अब भी अगर हासिल ना करो तो बदबख्ती और क्या हो। इसलिए अपनी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील करने का महीना है, रब से मांगने का महीना है, रोने का महीना है, गिड़गिड़ाने का महीना है, गुनाहों की बख्शीश करवाने का महीना है, और आइंदा अपने फ्यूचर के लिए दुआएं मांगने का महीना है। तो जिसने इस तरह इस महीने को गुजार दिया, इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके में उसकी दुआएं जरूर कबूल होंगी और इस दुनिया में भी कामयाब रहेगा आखिरत में। آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، اس آنے والے مقدس اور بابرکت مہینے رمضان میں ہم سب کو عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں فحش گوئی سے بچا، مولا ہمیں حرام کی طرف جانے سے بچا، مولا ہمیں حرام کھانے سے بچا، مولا ہمیں حرام کی طرف دیکھنے سے بچا۔ مولا ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو اور تیرا حبیب راضی ہو۔ مولا ان کاموں سے بچ جائیں جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہو۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نیک کر دے، مولا ہم سب کو ایک کر دے، مولا ہم سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے، یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے، یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔